ओम शांति। मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं आप। श्रेष्ठ पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अलग अलग उत्तर होंगे। बोलो। किसे कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ? कई बातें आएंगी इसमें, एक लाइन की डेफिनेशन नहीं। जो सदा खुश रहें, एक बात लिखते जाओ, आपको काम आएगी क्लास कराने में। और जो अच्छे पुरुषार्थी, जो सबसे पहला उत्तर ये है, जो योग युक्त हों। अब सूक्ष्म पुरुषार्थ की ओर चलें। जब हमें सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है तो किन किन चीजों का त्याग करना होता है? सबसे अच्छा त्याग कौन सा है जो हमारे जीवन को दिव्य कर देता है? मैंपन का। इसके साथ एक शब्द और जोड़ दें, मैं और मेरा। और सूक्ष्म त्याग कौन सा है? आप सब जानते हैं, केवल उसको निकालना है, हैं? बोलो। जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसकी सूक्ष्मता और सूक्ष्म हो जाए, मैंपन भी ऐसा ही है, वो है सूक्ष्म इच्छाओं का त्याग। उसको हर पुरुषार्थी स्वयं चेक करेंगे कि कौन सी सूक्ष्म इच्छा हमारे पास बाकी है। मैं एक अनुभव की बात सुनाऊं आपको। 77 अव्यक्त मुरली का एक महावाक्य, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था, क्योंकि हर मनुष्य को जीवन में मान की इच्छा तो होती है, थोड़ी या बहुत। मुझे बहुत तो नहीं थी, पर थी। तो बाबा की मुरली में एक सुंदर बात आई, बड़ी गहरी भी है। बाबा ने कहा, तुम हो इस धरा पर सूर्य तुल्य, यही शब्द बाबा के, तुम सूर्य के समान हो। सूर्य से हम जानते हैं क्या होता है, सारा संसार प्रकाश लेता है। और ये मान श्यान है, टिमटिमाते दीपक। जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं वो दीपक हैं, और वो भी टिमटिमाते हैं। तीसरी लाइन बहुत अच्छी थी, इन दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। ये संकल्प बहुत छोटा है कि दीपकों से हमें रोशनी मिलेगी, हम सूर्य के समान हैं। मान आदि हैं अच्छी चीजें, और बाबा भी कहते हैं जिनको यहां ज्यादा मान मिलता है उन्हें चारों युगों में ज्यादा मान मिलता है, लेकिन एक है मान के पीछे भागना और एक है अपनी योग्यताओं से मान प्राप्त करना। तो सूक्ष्म इच्छाओं का त्याग, बचपन से ही मैं गीता पढ़ता था और जब बाबा के ज्ञान में आए और गीता के भगवान की बात उन दिनों बहुत जोर शोर से चलती थी, अब तो खत्म हो गई थी, तो गीता में बहुत अच्छी कुछ बातें थी, निष्काम भाव से कर्म करना। तो मैंने ये पहले से ही थोड़ा थोड़ा सीखा था और जब बाबा की मुरलियां चली इस पर ही तो बातें बहुत क्लियर हो गई। गीता पढ़ने से वो बातें क्लियर नहीं होती थी, बाबा की बातें सुनकर वो बातें बहुत क्लियर हुई कि कर्म निष्काम भाव से करो, कर्म का जो फल मिले उसे भी प्रभु अर्पण कर दो। मान लो हमने बहुत अच्छा काम किया और हमारी वाह वाह हुई, बहुत महिमा हुई, इस महिमा को भी ऊपर, तो एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि अगर हम महिमा को भी प्रभु अर्पण कर देते हैं तो जब कभी हमारी ग्लानी होगी उसका हम पे प्रभाव नहीं आएगा, वो भी अर्पित हो जाएगी। तो एक चीज आप लिखेंगे अपने पास, आज की भट्टी गहन चिंतन की भट्टी रहेगी कि हमें अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए कौन कौन से सूक्ष्म त्याग करने हैं। जीवन का कुछ महान लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, इस बात पे आप सभी बहुत ध्यान देंगे और अपने को चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है, राह भटक जाते हैं। देखो क्या होता है, जो लंबा समय समर्पित जीवन में जीते हैं, कोई बुरा ना मानना मेरी बात, क्योंकि हम सबको साक्षी होकर देखते रहते हैं, लंबा समय जीवन जिया है तो ढिलाई आ गई, ढिलाई को स्वीकार भी कर लिया, अब ऐसा ही ठीक है। लेकिन जीवन में कुछ महान कार्य करने का लक्ष्य होना ही चाहिए, और महान कार्य कौन कर सकेंगे, जिनके सिंपल उत्तर है जिनके जिनके संकल्प महान हो और जिनकी स्थिति महान हो। आप आने वाले समय की विजन बनाओ, चित्र बनाओ, आने वाला समय कैसा है। मैं आपको एक विजन देना चाहता हूं और फिर एक लक्ष्य बनाना, एक सफल टीचर का योग कितना होना चाहिए, बोलो, बोलते नहीं आप, 800 मुरलियों की बात है, चार तो होना ही चाहिए, लेकिन कहीं कहीं सेंटरों में बहने योग मुक्त हो जाती हैं। होना चाहिए योग युक्त, हो जाते हैं योग मुक्त। उससे क्या होता है, क्योंकि ये जो मनोविकार हैं, इनको बिना योग बल के जीता नहीं जा सकता। फिर अनेक तरह की माया प्रारंभ हो जाती है, जो अच्छी नहीं रहती, जीवन बिगड़ता है। इसलिए उस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक और संकल्प आपको देता हूं, चिंतन। आप सभी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। आप अपने त्याग को जानते हो या न जानते हो, किसी को ऐसा भी लगता होगा भाई उस घर से निकल के बाबा के घर में आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। कोई साधारण घर से निकल के बड़े घर में आ गए और अच्छा हो गया। लेकिन त्याग कुछ और है, पवित्र जीवन बना देना, संसार की तृष्णाओं को छोड़ देना, श्वेत वस्त्र धारण कर लेना, ये सब अपने में बहुत बड़े त्याग हैं। भगवान के कार्यों में लग जाना बहुत बड़ी चीज है। अपने जीवन को खुद वैल्यू दें, ध्यान से समझ लेना इस बात को। जिन लोगों का पुरुषार्थ ढीला है, उसका प्रथम कारण होता है कि अपने जीवन की वैल्यू खुद पता नहीं है। अपने त्याग को महत्व दें और एक संकल्प कर दें, त्याग किया है तो बाबा से सब कुछ लेकर ही रहेंगे। हम अपने त्याग को निष्फल नहीं जाने देंगे। ठीक है संकल्प, चिंतन करना इस पर। देखो, मैं जब समर्पित होकर आया यज्ञ में, तो मेरे लिए एक ही त्याग था, बाकी तो कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा, गांव में रहते थे, छोटे घर से निकल के बड़े मधुबन में आ गए, बड़े खुश हुए हम। और त्याग जैसी कोई चीज नहीं थी, कोई नौकरी धंधा पैसा नहीं था जिसको छोड़कर आए। एक ही चीज में रस था, वो था पढ़ाई, उसको छोड़कर आ गए। तो मुझे ये रहता था, मैं हर हफ्ते लिखा करता था अपने पास, तुम समर्पित क्यों हुए हो, क्या दूसरों को देखने के लिए। अगर दूसरों को ही देखना था तो उधर ही रहते, क्यों तुम समर्पित हुए हो, क्या ईर्ष्या द्वेष पर चिंतन के लिए। अंदर से आवाज आती थी, नहीं। तो बहुत अच्छे मुझे अनुभव रहते थे, उमंग आती थी कि तुम क्यों समर्पित हुए हो। तो एक महान लक्ष्य जीवन में रहता था। आप सबको भी मैं वही कहूंगा, जीवन लक्ष्य के साथ चले। लक्ष्य विहीन जीवन, लक्ष्य के बिना का जीवन, कहीं भी मनुष्य कुछ श्रेष्ठ प्राप्त नहीं कर सकता। रियलाइज करो, आप सब ने बहुत बड़ा त्याग किया है, संसार की नजर भी आपकी तरफ है, त्याग किया है तो महान बनकर ही रहेंगे, त्याग किया है त्याग से जीवन में तेज आता है, त्याग से तपस्या होती है, हमारे मस्तक पर तेज भी बहुत और हमारी तपस्या भी बहुत। अगर तपस्या नहीं तो त्याग निष्फल होता है, सूखापन लाता है, त्याग का बल नहीं मिलता। आपने सुनी हो बाबा की एक बहुत गुह्य मुरली, त्याग तपस्या सेवा पर है, रिपीट होकर आ चुकी है, जितना त्याग उतनी तपस्या और जितनी तपस्या उतनी ही सेवा, तीनों का लिंक जोड़ा है बाबा ने बहुत सुंदर। तो जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। एक और बात इससे जुड़ी हुई, ये बात बहुत गहरी है। आप तीन तीन मास का लक्ष्य बनाएं, 3 मास में मुझे ये करना है, 3-point plan, 3 point में केवल, लंबा चौड़ा नहीं, और उसे डायरी पर लिखो सवेरे। मान लो 1 point कहता हूं, आपने लक्ष्य बनाया मुझे 3 मास में सदा खुश रहना है, कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूंगी, लिख दिया डायरी में, सच्चे मन से लिख दिया, तो क्या होगा, इसको आपका अंतर्मन स्वीकार कर लेगा और ब्रेन की सारी शक्तियां आपको खुश रखने में लग जाएंगी। हमारे इस ब्रेन में बहुत शक्तियां हैं, ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं, इसमें अनंत ज्ञान और अनंत शक्तियों का भंडार है, हम उसे यूज कर लें। आपने लिख दिया 3 मास में मुझे रोज 3 घंटा योग अवश्य करना है, तो आपकी ब्रेन की शक्तियां आपको 3 घंटा योग करने के लिए बार बार प्रेरित करेंगी। ये एक बहुत सुंदर विधि है, फिर उसको बढ़ाओ धीरे धीरे। लक्ष्य इसे कहते हैं, फिर वो महान लक्ष्य बनाओ, मुझे 5 साल में ऐसी स्थिति तक पहुंचना है, उसको 3-3 मास के लक्ष्य में बना लो, एक धारणा की पॉइंट, 1-2-3 स्वमान और 1 योग का चार्ट, 3 बातों में। धारणाएं बहुत सारी हैं, आप 20 धारणाओं की लिस्ट बना सकते हैं, जैसे संतुष्टता, केवल गुण नहीं, जैसे संतुष्टता, अनासक्त वृत्ति, न्यारापन, प्यारापन, निर्भयता, अचल डोल स्थिति, ये धारणाएं हैं हमारी, ये सब मैंने अपने जीवन में बहुत किया है। 16 धारणाओं की लिस्ट बनाई, उनको इस तरह अभ्यास में लाया, 3-3 मास, बहुत अच्छे अनुभव उससे हुए। मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं भय छुपा होता है, मुझे भी बचपन से फीलिंग बहुत आती थी, मैंने महसूस कर लिया फीलिंग तो सबसे बुरी चीज है, उसके मैं पीछे लग गया कि मुझे फीलिंग से प्रूफ हो जाना है। अच्छी मेहनत की अपने से और उससे मुक्त हुए। तो जीवन का लक्ष्य अब क्या ध्यान में रखकर लक्ष्य बनाएंगे, जो मैं आपको कह रहा था, अगले 5 साल में संसार का क्या हाल होगा और हमें क्या करना पड़ेगा। बाबा साकार में कह आए, विनाश काल में ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। आप में से किसी ने मेंटल हॉस्पिटल नहीं देखा होगा, हमें इस बार देखने का भाग्य मिला, मैं उसे भाग्य ही कहूंगा। दिल्ली में हम गए तो वहां एक प्रोफेसर साइकोलॉजी की और डॉक्टर, वो मिली और कहा हमारे यहाँ सादरा है उस तरफ नॉर्थ ईस्ट में, तो कहा वहां एक बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, मैं उसी में हूँ। वहां का जो डायरेक्टर है वो एनटी ब्रह्मा कुमारीज है। हमने उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल एनटी है। उसके पास चले, हम खाली थे उस दिन, हमने कहा चलो चलते हैं। मेट्रो से गए वहां। मैं आपको एक सुंदर चीज सुनाना चाहता हूं इस लक्ष्य से। तो डायरेक्टर तो जैसे हमारी ओर देखे भी नहीं, हम उसके केबिन थी बड़ी अच्छा बड़ा हॉल रूम, उसमें जाके बैठे देखे ही नहीं, इधर उधर के लोग आ रहे बात कर रहा, हमारी ओर देखे नहीं। आखिर उस प्रोफेसर बहन ने कहा, कुछ परिचय कराया, पता नहीं मैंने उसको क्या सुनाया, 5 मिनट में वो हमारा हो गया। वो बहन जी तो बड़ी खुश हुई, कहा चलो मैं अपना हॉस्पिटल आपको दिखाता हूं। हमें भी रुचि थी मेंटल लोग कैसे होते हैं जरा देखे तो सही। तो वो चला, हम भी 7-8 थे और हम गए। और बातें तो कोई खास नहीं है, कोई कैसा था कोई कैसा था। एक बहन को खाना दिया तो खाने की थाली लेके चार ओर घूम रही है, लगातार घूम रही है, बस वो घूमती ही रहेगी जब तक कोई उसे पकड़ के बैठा ही नहीं। तो हमने क्या देखा, हमें उस वार्ड में ले गए जहां सदा के लिए रहने वाले मेंटल पेशेंट थे, जिनका घर वाले उन्हें छोड़ गए थे कि यहीं रहो। उन सब की खाट के पीछे, जगह बनी हुई थी सबकी बेड्स के पीछे, अपनी अपनी इष्ट देवियों के फोटो, वो मिट्टी के या किसी के बन जाते ना प्लास्टर ऑफ पेरिस के, वो रखे हुए थे। किसी के पीछे दुर्गा रखी हुई थी, किसी के पीछे संतोषी माँ, किसके पीछे गणेश, किसके पीछे हनुमान, ये सब थे। तो हमने उनसे पूछा ये क्या रखे हैं, तो डायरेक्टर ने बताया, वो डायरेक्टर उनकी बहुत केयर करता है, खुद जैसे बाप हो उनका, फिर तो वो हमारा हो गया था, बहुत प्यार हो गया उसका। तो कहा ये हैं तो मेंटल पेशेंट, इन्हें कुछ पता नहीं दुनिया क्या है, लेकिन ये सवेरे उठते ही अपने अपने इस देवियों के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो हमारे साथ गीता बहन भी थी, इसने फट से कहा, हमें तो ख्याल नहीं हुआ, लेकिन इसने फट से कहा कि देखो ये सारा संसार भूल गए हैं, भूले हुए हैं, लेकिन अपने इष्ट देव देवियों को नहीं भूले। कि बहुत ही मेरे लिए भी प्रेरक बात थी कि जब ये संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, जब इस संसार में दुख अशांति के पहाड़ गिरेंगे, बाबा के महावाक्य है ना ये, पहाड़ गिरेंगे, तब ये संसार के सभी लोग हमें अपने इस देव देवियों को पुकारेंगे, कोई इनका सहारा नहीं होगा, लौकिक संबंधी ने ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे इन पेशेंट्स को छोड़ गए हैं, तब हम ही इनके सहारे होंगे। हमने तो वो सीन देखा, और हम सभी बहुत अंतर्मुखी हो गए। फिर हमने वहां कुछ देखा ही नहीं, हम ट्रेन में बैठ के आए लेकिन हमारी स्थिति मगन रही। हमें याद आता रहा तुम्हें आगे चल के बड़े बड़े काम करने हैं, तुम्हारा जीवन अपने लिए ही नहीं संसार को बहुत कुछ देना है। ये सब काम मुझे ही नहीं आप सबको भी करना है। तो आने वाला समय हम सभी का इंतजार कर रहा है, हमें देना होगा। आज आप चिंतन करना, मेरे पास संसार को देने के लिए क्या क्या है, लिख लो सभी। गहन चिंतन करना रोज, मेरे पास संसार को देने के लिए क्या क्या है। बहुत सेवा होगी हमारी दृष्टि से, बहुत सेवा होगी हमारे वरदानी बोल से, बहुत सेवा होगी हमारे वाइब्रेशन से। मैं एक विजन दूं आपको जो प्रैक्टिकल होने जा रहा है संसार में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, बड़ौदा में बन गई बहुत ज्यादा। विनाश में क्या होगा, ये गिरेंगी, धरती हिलेगी और ये गिरेंगी। अब आप सोचो ऊपर रहने वाले लोग गिर गए, कोई मर गए, लेकिन सभी मरे नहीं। किसी का हाथ कट के गिर गया, पैर कट के गिर गए, किसी का सिर फटा है और वो अंदर पड़े हैं। वहां उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये प्राकृतिक प्रकोप इतने ज्यादा हो जाएंगे कि सरकारें भी हाथ खड़ा कर देंगी, अब कुछ नहीं किया जा सकता, स्वीकार कर लेंगे, अब ये प्रकृति बदला लेगी। तो जो पाप आत्माएं हैं वो दब जाएंगी, तड़फेंगी वहां। आप सोचो ऐसे में मनुष्य को प्यास कितनी लगती है, कोई पानी नहीं होगा, सिर फूट गया है, हाथ कट गए हैं, कोई पूछने वाला डॉक्टर नहीं होगा, ऐसे में वो सब किन्हें पुकारेंगे, भगवान को या हम सबको। और वो ये कहेंगे हमें उठा लो, क्योंकि वहां और कोई मार्जिन नहीं होगी। हे प्रभु जल्दी देह से मुक्त करो, हम सबका बहुत बड़ा काम होगा। मास्टर मुक्तिदाता के स्वरूप में स्थित होकर इन्हें ऐसे वाइब्रेशंस देंगे कि वो देह से मुक्त हो जाए। उन्हें हम दिखाई देंगे वहां कि हमारी इष्ट देवी आई, हाथ रखा और गए, हम ले गई हमें साथ में। ये मैंने दो उदाहरण आपको दिए, तीसरा भी देता हूं। मुझे ऐसा साफ दिख रहा है संसार में डिप्रेशन और नींद ना आना, ये दो बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं अब के संसार के अंदाज को देखूं तो संसार में 5-7% लोग सो नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं। और 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि संसार के आधे लोग रात को सोएंगे नहीं। और उसका कारण है, आप सबको ये बात पता रहे, बाबा की मुरली से है। बाबा ने कहा तीन तरह से विकर्म ज्यादा विनाश होंगे, जिनके अति पाप कर्म हैं, नींद न आना, डिप्रेशन होना और इविल सोल्स का प्रभाव होना। तो विकर्म मनुष्य को सोने नहीं देंगे, एक्टिव कर देंगे ब्रेन को, शांत नहीं होने देंगे और मनुष्य सो नहीं पाएंगे। क्या करना पड़ेगा हमें, बोलो क्या करेंगे आप? आपके पास लोग आएंगे, 100 लोग रोज आ जाएंगे, बहन जी रात को नींद नहीं आती, कुछ करो, आप तो त्यागी तपस्वी हो, कुछ करो। क्या करेंगे, कुछ बोलो फिर मैं बताता हूं। हम पूर्वज बनकर वाइब्रेशंस देखकर उन सब को सुला देंगे, फिर सोएंगे। आप सबको मां बनकर, जैसे मां अपने बच्चों को थपथपा के लोरी दे के सुला देती है ना, हम सबको भी सभी को वाइब्रेशंस देखकर सुलाना होगा। और ये काम वही कर सकेंगे जो बहुत जग गए हैं, जिन्हें बहुत नींद आती है वो नहीं, जो जागृत हो गए हैं पूरे स्मृति स्वरूप, जो महान बन गए हैं, जिनके संकल्पों में पावर आ गई है, जो संकल्प करेंगे योग युक्त होकर, सभी सो जाओ बाबा की गोद में और उन्हें नींद आने लगेगी। ऐसे बहुत सारे काम आप सबको भी करने होंगे, करेंगे करेंगे या सेंटर संभालने में ही रह जाएंगे? सेंटर संभालना तो एक ड्यूटी है, बाबा का ज्ञान देना ये तो भाग्य है आप सबका कि जीवन भगवान के काम आ गया, आपको नशा रहना चाहिए। हम बहुत भाग्यवान हैं, हमारा जीवन भगवान के काम आ गया, हमारी बुद्धि भगवान के काम आ गई, हमारी सब योग्यताएं उसके काम आ गई। ये मैंने बातें आपको इसलिए सुनाई, इन्हें ध्यान में रखकर अपने को महान बनाने का लक्ष्य बनाओ। हमारे महान कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाकी सब एक तरफ रख दो, छोड़ दो, न टकराव न तेरा मेरा कुछ काम नहीं आएगा। मैं एक बात पर अपनी बुद्धि में बहुत विचार करता हूं और उसका बहुत फायदा होता है, उसको हम एक बहुत सुंदर बात है, मुझे लगता है ज्ञान की सबसे गुह्य बात है वो। बाबा ने साकार में ही कहा था, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। बहुत गुह्य बात है। इसका सीधा सा अर्थ है कि बाबा को हमने अभी जाना नहीं है, क्या क्या जानना है इस पे चिंतन करें। तो मैं सोचा करता हूं बाबा अपना ये स्थापना का कार्य कैसे कैसे कर रहा है। सच तो ये है, संपूर्ण सच, कि ये सारा कार्य ऊपर से हो रहा है, नीचे वाले नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हो रहा है। हम जैसे जैसे बाबा की शक्तियों को, उसके कार्य करने के तरीके को जानते जाएंगे, हम निश्चिंत होते जाएंगे, योग युक्त होते जाएंगे, उसकी शक्तियों को अपने में समाते जाएंगे, मोस्ट पावरफुल होते जाएंगे। तो सेवाओं की किसी भी बात से ऊपर उठकर जो अपने योग को 8 घंटे कर सके वो तो होंगे विजयी रत्न। विजयी रत्नों के लिए 3 ही क्वालिफिकेशन है, 8 घंटा योग, संपूर्ण प्योरिटी और संपूर्ण मैपन, अहंकार का त्याग। और जो 4 घंटे योग करेंगे वो जीवन में काफी संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि 4 घंटे योग के बिना हम मनोविकारों को नहीं जीत सकते। देखो बाबा की मुरली में रोज आता है, आप सब सेवाओं में अनुभव करते होंगे, 10 साल ज्ञान में चलकर भी कई लोग पीछे हट जाते हैं, उसका और कोई कारण नहीं होता, एक ही कारण होता है, विकारों को जीत नहीं पाते, और उसका कारण है कि योग नहीं होता। आए भाग दौड़ के मुरली सुनी, सवेरे उठे नहीं उठे, सारा दिन काम किया, बाबा बाबा किया, बस। बिना 4 घंटे योग के कोई इस माया को जीत नहीं सकता। जिनका 4 घंटे से कम योग होगा, जिनका योग होगा नहीं, उनके संस्कार भी नहीं बदलेंगे।
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा
योग के कोई इस माया को जीत नहीं सकता। जिनका 4 घंटे से कम योग होगा, जिनका योग होगा नहीं, उनके संस्कार भी नहीं बदलेंगे, उनकी प्योरिटी भी स्ट्रांग नहीं होगी। तो आप सभी अपने लक्ष्य पर बहुत अच्छी तरह से चिंतन करेंगे। एक काम करना है अभी आपको, क्लास हम थोड़ी देर में ये यहां समाप्त करेंगे, लेकिन मैं आपको होमवर्क देता हूं। यहां बैठकर करें, अलग अलग चले जाएं, ग्रुप में बैठकर करें, पर एक काम सबको व्यक्तिगत करना है, बाबा के नाम एक पत्र लिखना है अपनी उमंगों का। अच्छा पत्र लिखो, शुक्रिया करो उसे, तुमने मुझे क्या क्या दिया, कितने अच्छे अवसर दिए, कितनी अच्छी बुद्धि दी, बल दिया, ज्ञान दिया, अनेक चीजें दी हैं, उन्हें लिखना, शुक्रिया करना। और आज से हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए हम क्या क्या करेंगे, तुम्हारे प्यार और पालना का रिटर्न इस तरह देंगे, आज उसके नाम पत्र लिख दो। किसी को देना नहीं है, आपका बिल्कुल प्राइवेट पत्र, अपनी अपनी डायरी में लिख लो, कागज पे लिख दो, लेकिन सच्चे मन से लिखो। 15-20 मिनट बैठ के अपने जीवन का कुछ महान लक्ष्य बनाकर पत्र लिखो बाबा को। एक काम। दूसरा काम, सूक्ष्म मैपन की लिस्ट बनानी है, कम से कम 25। ये काम आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, 3-4-5 बहने बैठे हैं और मैपन की लिस्ट बनाएं। और तीसरा एक काम जिस पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन आपको चिंतन करना है, मुझे अपना योग का चार्ट 4 घंटे करना है, कैसे कैसे हो सकता है? 4 घंटे बैठकर नहीं, बैठो चाहे आप 1 घंटा, लेकिन 4 घंटे कर्म में। आप गीता पाठशाला में जाते हैं, कैसे हो सकता है? आप सेंटर की भिन्न भिन्न सेवाओं में बिजी रहते हैं, क्या अभ्यास कर सकते हैं? कहाँ कहाँ समय निकाल सकते हैं? बाबा के कमरे में बैठ सकते हैं? क्या क्या करें जो योग होता रहे, बाबा से जुड़े रहें हम सारा दिन, ऐसा लगे बस वो हमारा साथी है।